दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स है जो नाम से प्रेरणा है, काम से प्रेरणा है और अंजाम से भी प्रेरणा है, क्योंकि काम तो बहुत लोग करते हैं लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचा पाना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे साथ जो शख्स इस वक्त मौजूद है वो अपने काम को अंजाम तक पहुंचा कर अब सुर्खियों में है, क्योंकि प्रेरणा पाहवा को ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल से अवार्ड्स नॉमिनेशन मिला है सामाजिक कार्य के लिए। प्रेरणा जी, आपका स्वागत है SBS हिंदी के कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, इतना सुंदर और इतना सब कुछ अच्छा मेरे बारे में कहने के लिए और इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे नहीं पता मैं इस लायक हूँ या नहीं।
दरअसल आपका काम है जो इतना सुंदर है। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि प्रेरणा काम करती है ऐसे बच्चों के लिए या लोगों के लिए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो बीमार हैं, और उनके लिए धन जुटाना मुख्य काम है प्रेरणा का। क्यों प्रेरणा?
हाँ जी, बिल्कुल सही कहा विवेक जी। पिछले 2-3 सालों से हम कैंसर पेशेंट्स और ल्यूकेमिया पेशेंट्स की मदद करते आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो या इमोशनल सपोर्ट हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम उनके साथ डटे रहें, जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनके साथ हम उनका पूरा पूरा साथ दें और उनकी पूरी तरीके से मदद करें।
अच्छा, प्रेरणा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और अभी ब्रिस्बेन में रहती हैं। तो पहले तो प्रेरणा हमें थोड़ा सा बताइए कि ये छत्तीसगढ़ से ब्रिस्बेन तक का सफर कैसा और क्यों हुआ?
छत्तीसगढ़ रायगढ़ बहुत ही एक छोटा शहर है जहाँ पर मेरी पैदाइश हुई। मतलब वैसे तो मैंने काफी भारत भ्रमण किया हुआ है पढ़ाई की वजह से, क्योंकि बहुत ही छोटा शहर है। सिर्फ 10वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था मेरे रहते रहते वहां पर, तो मैंने 11th और 12th अपना उड़ीसा से किया, संबलपुर से। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो फर्दर ग्रेजुएशन की है IT में वो हैदराबाद में की, और वहां से मेलबर्न आना हुआ मास्टर्स के लिए। फिर मास्टर्स में मैंने अपने सुनबन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स कंप्लीट किया, और जॉब पर्पसेस की वजह से मुझे माइग्रेट होना पड़ा 2008 में ब्रिस्बेन।
और ये जो प्रक्रिया हुई, ये जो नया जुड़ाव आपकी जिंदगी में हुआ, ये सामाजिक कार्य का और खास तौर पर कैंसर पीड़ित लोगों के लिए, ये कहाँ से आया?
2009 में मेरी बुआ की बेटी है जो मेरी कजिन है, मेरी ही उम्र की थी वो, उनका देहांत हो गया और वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। जब वो 10th क्लास में थी तब डायग्नोज हुआ था उनको भी ब्लड कैंसर, और 10th क्लास से लेकर के 2009 तक का जो सफर था वो बहुत स्ट्रगलिंग था उनके लिए। तो क्योंकि वो मेरी एज की थी और हम बचपन से ही साथ में खेले, पले बड़े हुए, तो मैंने ड्रेस्टिक चेंज होते हुए देखा फिजिकली उनमें, मेंटली। हालांकि वो मेंटली काफी स्ट्रांग थी, मतलब पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो ट्यूशंस वगैरह भी देती थी बच्चों को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था एवरी वीक या 2 वीक में, जो दवाइयां होती थी उनके लिए वो खुद ही पैसे जोड़ती थी। वो 2009 मेरा इंडिया जाना हो रहा था, 29th November आई स्टिल रिमेम्बर, और उससे ठीक 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया। तो दैट वाज बिट शॉकिंग फॉर मी। और जब वो डायग्नोस हुई थी 10th क्लास में, तब तो मुझे भी, मतलब मेरी भी उम्र उतनी ही थी 14-15 साल, तो मुझे उतना पता नहीं था कैंसर के बारे में या वो किस दौर से गुजर रही है उतना पता नहीं था, क्योंकि बचपना था। लेकिन उनका देहांत हुआ तब थोड़ा सदमा सा लगा मुझे। लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब हो और आप कब चले गए। तो वो जो मेरे दिमाग में बात थी उस समय से ही थी, 2009 से ही थी, कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही है ऐसे लोगों के लिए। तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मैंने उसी टाइम से ही शुरू कर दिया था।
ये क्यों सोचा कि आर्थिक रूप से मदद ही सबसे जरूरी है?
कितना मुश्किल होता है सरवाइव करना ही लोगों के लिए, कि एक तो आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई घर का खर्चा ही निकाल रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप, मतलब अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए आपको, तो सिर्फ जान बचाने के लिए अपने बच्चों की या अपने लव्ड वंस की आप दुगनी मेहनत कर रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो कि भाई कहाँ से पैसे जोड़ें। वो एक चीज थी जो मैंने देखी। और 2015 में मेरे सामने एक किस्सा हुआ था उज्जवल पोर्टल का, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी यहाँ पर, जैसे कि हम लोग आए थे यहाँ पर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था जो कुछ सपने लेकर के आया नेपाल से 20 साल की उम्र में, 2015, 5 फरवरी 2015 को वो डायग्नोस्ड हुआ था उसको ल्यूकीमिया। उसी समय मुझे पता चला कि भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग रेट्स हैं, जहाँ कहीं भी जाइएगा आपका मिनिमम खर्चा 30 से 50 लाख तक का है। पैसा बहुत 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 मैटर
क्या
करता है।
आसान होता है किसी किसी भी कॉज के लिए लोगों से पैसा ले पाना, जमा कर पाना? बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे प्रेरणा, क्योंकि किसी को भी लोग समझते हैं, दर्द का एहसास भी उन्हें होता है, लेकिन जब बात आती है पैसे देने की तो वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम होता है। आपका क्या अनुभव है?
पहला ही जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा दिल दुखा देने वाला था। कुछ लोगों ने डिस्करेज किया, डीमोटिवेट किया कि पहली बात तो भाई ये अपनी इंडियन कम्युनिटी से नहीं है, तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो हेल्प करने के लिए। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि अरे ये स्कैम्स वगैरह होते रहते हैं, तुम इनसे पीछा छुड़ाओ, ये सब फालतू की बातें हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो खुद मुलाकात की है उस लड़के से और मैंने देखा है उसको खुद हॉस्पिटल में, तो ये कोई स्कैम वगैरह नहीं है। बट अगर कोई भी मदद कर सकता है, $5, $10, $100, जितना भी बन सके आपसे, आप करें। पहले जब आप किसी से पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो लोग आपको थोड़ी नीची नजरों से देखते हैं, आप क्यों मांग रहे हैं, इसमें आपका पर्सनल बेनिफिट क्या हो सकता है, या मतलब रफा दफा करो थोड़े बहुत पैसे दे करके। लोग भूल जाते हैं कि दे आर ट्रूली ब्लेस्ड, हम ऐसी कंट्री में हैं जहां पर मेहनत करके आप कहीं भी पहुंच सकते हो। आप यहाँ तक पहुंचे हो तो अपनी मेहनत से पहुंचे हो। आज हम जॉब पे हैं या घर घर लेकर के यहाँ पर रह रहे हैं, अपनी फैमिली रेस कर रहे हैं, सब यहाँ पर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ही आए हैं शायद। तो आपके ऊपर कितना बड़ा आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि आप यहाँ तक पहुंचे और आप एस्टेब्लिश्ड हो रहे हो। तो अगर आपको थोड़े बहुत पैसे दे करके ही या समय दे करके ही किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है तो आप क्यों ना करें। वो काफी हद तक लोग समझते नहीं है। और वही मेरे साथ भी हुआ, बंदे बहुत डिस्करेज किए, डीमोटिवेट किए मुझे, छोड़ो आप 50 लाख यहाँ पर जुटाने की बात कर रहे हो, विच इज लाइक $100,000, ये मजाक है क्या, $100,000 इकट्ठा करना, ऐसा लोग बोलते थे तो अजीब लगता था। और फिर जब लोग पैसे दे डालते भी थे टिन बॉक्सेस में, जब हम इंडियन इवेंट्स में और काफी कम्युनिटी इवेंट्स में टिन बॉक्सेस वगैरह लेकर के जाते थे, तो यहाँ पानी की बोतलें बेची हैं, पैसे इकट्ठा करने के लिए टिन बॉक्सेस रखे हैं, कम्युनिटी इवेंट्स में जा करके अनाउंसमेंट्स किए हैं, लोगों के सामने जा जा करके डब्बे रखे हैं कि आप प्लीज कुछ डाल दें। तो लोग सोचते थे कि पता नहीं ये शायद एवं ही कोई बंदा है या बंदी है जो आकर के पैसे मांग रही है, मीन्स दे डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू डू। बाद में अब शायद लोगों को दिखता है या पता चलता है कि आई एम एन आईटी प्रोफेशनल, मेरी 9 to 5 जॉब है, एक वेल रिस्पेक्टेड जॉब है, वेल पेड जॉब है, और उसके बाद जितना भी मैंने समय निकाला हेल्प करने के लिए वो मेरी मर्जी थी, और लोगों के सामने जो मैंने डब्बे रखे वो एक एक पैसा जो है वो एक्चुअली जितना भी उन्होंने दिया, $2, $5, जितना भी उन्होंने दिया, उससे वाकई में किसी की मदद हुई है और एक जान उन्होंने बचाई है। तो नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि एवरी ड्रॉप काउंट्स।
अच्छा, आपका एक नया कैंपेन है शेव।
मैंने मैंने अपने बाल उतरवाए थे 28 अप्रैल को ल्यूकीमिया फाउंडेशन के लिए, शेव फॉर द क्योर।
हाँ, शेव फॉर द क्योर।
हाँ जी,
तो ये क्या है, जरा इसके बारे में बताइए थोड़ा।
ये बेसिकली मैंने क्या कहते हैं, अपने बाल उतरवाए थे 28 अप्रैल 2017 को, और उससे फंडरेजिंग किया था, फेसबुक पे और सब जगह मैंने शेयर किया, पोस्टर्स वगैरह लगाए कि एक टारगेट मैंने रखा था $2,000 का, कि $2,000 तक अगर आप पैसे डालते हैं तो मैंने अपना मुंडन करवा लेना है। तो मेरे ऑफिस पे, काम पे कलीग्स जो हैं मेरे, काफी फ्रेंड्स जो हैं, उन लोगों ने काफी एनकरेज किया और $2,000 उन्होंने इकट्ठा किए ल्यूकीमिया फाउंडेशन क्वींसलैंड के लिए। तो मैंने अपने बाल उतरवाए थे,
तो लोग पागल भी कहते होंगे।
शायद कहते
वेल,
होंगे सामने किसी ने नहीं कहा अभी तक लेकिन कहते भी होंगे।
बड़ा काम करने वाले लोग अक्सर पागल कहे जाते हैं इस दुनिया में। प्रेरणा, ऐसे ही आप हम सबको, लोगों को, समाज को प्रेरित करती रहिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी।